नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर आज राज्य के सभी बूथ कमेटी अध्यक्षों से सीधा संवाद करेंगे। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नाम वापसी का आज अंतिम दिन। 19 अप्रैल को होने वाले मतदान के लिए अब तक 39 उम्मीदवार चुनाव मैदान में। स्वास्थ्य विभाग ने मुजफ्फरपुर सहित 12 AES प्रभावित जिलों के अस्पतालों को अलर्ट किया। प्रोटोकॉल तैयार करने के लिए विशेष कमेटी होगी गठित। और मौसम विभाग ने कहा है इस महीने राज्य में तापमान सामान्य से अधिक रहने की संभावना, बारिश सामान्य से कम होगी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर आज बिहार के सभी बूथ कमेटी अध्यक्षों से सीधा संवाद करेंगे। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बताया कि प्रधानमंत्री राज्य के सभी बूथ कमेटी, बूथ अध्यक्ष, सभी पन्ना प्रमुखों और कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद करेंगे। तय कार्यक्रम के अनुसार शाम 6 बजे प्रधानमंत्री प्रदेश के 77,392 भाजपा बूथ अध्यक्षों से बातचीत करेंगे। वहीं नवादा, खगड़िया, सीवान के नौतन, दरभंगा के जाले और औरंगाबाद के रफीगंज के एक एक बूथ कमेटी सदस्यों से सीधा संवाद करेंगे। प्रधानमंत्री इस संवाद कार्यक्रम के दौरान में नमो ऐप, नमो टीवी और प्रधानमंत्री के आधिकारिक यूट्यूब चैनल नरेंद्र मोदी के माध्यम से लोगों से जुड़ेंगे। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए आज नाम वापसी का अंतिम दिन है। इन सीटों पर 39 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। चुनाव आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार इन सीटों पर 72 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र भरे थे, जिसमें 33 नामांकन पत्र रद्द कर दिए गए थे। गया संसदीय सीट से 15, जमुई से 7, नवादा से 8 और औरंगाबाद से 9 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। इस चरण के तहत गया, औरंगाबाद, जमुई और नवादा में 19 अप्रैल को मतदान होना है। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए कटिहार, किशनगंज, पूर्णिया, भागलपुर तथा बांका संसदीय क्षेत्र के लिए नामांकन की प्रक्रिया जारी है। कल नामांकन के तीसरे दिन किशनगंज और पूर्णिया से दो दो नामांकन दाखिल किए गए। कटिहार में जदयू के दुलालचंद गोस्वामी और एक निर्दलीय प्रत्याशी ने नामांकन दाखिल किया। वहीं पूर्णिया में जदयू के संतोष कुशवाहा जबकि एक निर्दलीय प्रत्याशी ने पर्चा भरा है। स्वास्थ्य विभाग ने मुजफ्फरपुर सहित 12 AES प्रभावित जिलों के अस्पतालों को अलर्ट किया है। विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने एक्यूट एन्सेफेलाइटिस सिंड्रोम AES और जापानी एन्सेफेलाइटिस JE मामले की समीक्षा करते हुए कहा कि इन मरीजों के इलाज के लिए नया ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल बनाया जा रहा है। पटना एम्स के वैज्ञानिक इस प्रोटोकॉल को तैयार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यूनिसेफ और पाथ के सहयोग से विशेष कमेटी भी बनाई जाएगी। इस सिलसिले में स्वास्थ्य सचिव आज मुजफ्फरपुर का दौरा करेंगे। गौरतलब है कि अब तक राज्य में AES के 4 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी में दो दो मरीजों की पुष्टि हुई है। वहीं जापानी इंसेफेलाइटिस के एक एक मरीज गया और बक्सर में मिले हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने CGHS योजना के लाभार्थियों को आयुष्मान भारत स्वास्थ्य आभा ID से जोड़ने के निर्देश दिए हैं। निर्देश के अनुसार लाभार्थियों को अगले 30 दिन में अनिवार्य रूप से CGHS ID को आभा ID से जोड़ना होगा। प्रदेश की बिजली कंपनियों में 2600 पदों पर नियमित बहाली की जाएगी। बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी ने तकनीकी कारणों से आज से शुरू होने वाली ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया स्थगित कर दी है। आधिकारिक जानकारी के अनुसार 15 से 20 दिनों में तकनीकी बाधा दूर कर अगले माह से आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी। इन पदों पर बहाली के लिए 2000 टेक्नीशियन ग्रेड 3, 300 कनिष्ठ लेखापाल और 150 सहित कई पदों पर भर्ती होगी। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए नाबार्ड ने बिहार को वित्त और अनुदान सहायता के लिए 10,372 करोड़ रुपए की सहायता दी है। नाबार्ड की ओर से बिहार को अब तक एक वर्ष में दी गई यह सबसे अधिक वित्तीय सहायता है। विमानन सुरक्षा निगरानी संस्थान BCAS ने यात्रियों की सुविधा के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत विमान में सवार होने के बाद उड़ान में ज्यादा देरी होने पर यात्रियों को हवाई अड्डे के प्रस्थान द्वार से बाहर निकलने की अनुमति दी गई है। नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक जुल्फिकार हसन ने बताया कि एयरलाइंस कंपनियों और हवाई अड्डा संचालकों के लिए 30 मार्च को नए दिशा निर्देश जारी किए गए थे। उन्होंने कहा कि इस व्यवस्था से यात्रियों को विमान में सवार होने के बाद लंबे समय तक बैठे नहीं रहना पड़ेगा। सार्वजनिक तेल कंपनियों ने वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर की दरों में कटौती की है। 19 किलोग्राम के सिलेंडर की कीमत में 30.50 रूपये की कटौती की गई है। इसके बाद अब यह सिलेंडर 1,764.50 रूपये में मिलेगा। वहीं 5 किलोग्राम वाला रसोई गैस सिलेंडर की कीमत में 7.5 रूपये की कमी की गई है। वाणिज्यिक एलपीजी की कीमतों में जनवरी के बाद यह पहली कटौती है। राज्य सरकार के अधीन कार्यरत भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों से लेकर तृतीय वर्ग के कर्मियों की चल अचल संपत्ति घोषित कर दी गई है। अधिकारी और कर्मियों के 31 दिसंबर 2023 तक दिए गए संपत्ति ब्यौरे को संबंधित विभाग की वेबसाइट पर सार्वजनिक किया गया है। इनमें मुख्य सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा और पुलिस महानिदेशक आरएस भट्टी समेत कई अधिकारी शामिल हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_ पटना पर जा सकते हैं। ये समाचार हमारे YouTube चैनल AIR News पटना पर भी सुने जा सकते हैं। मौसम विभाग ने अपने मासिक मौसम विश्लेषण में कहा है कि राज्य के अधिकांश हिस्सों में इस महीने न्यूनतम और अधिकतम तापमान सामान्य से अधिक रहने की संभावना है। इस दौरान लू के दिनों की संख्या भी सामान्य से अधिक रह सकती है। विभाग के अनुसार इस अवधि में वर्षा सामान्य या सामान्य से कम रहने की संभावना है। इधर प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में पछुआ हवा के प्रभाव के कारण तापमान में बढ़ोतरी का सिलसिला जारी है। कई स्थानों पर तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच गया है। पिछले 24 घंटों के दौरान वैशाली लगातार दूसरे दिन प्रदेश का सबसे गर्म स्थान रहा। यहां का अधिकतम तापमान 40.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक शैलेन्द्र कुमार पटेल ने बताया कि अगले 2 दिनों के दौरान राज्य के अधिकतम तापमान में किसी विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है। इसके बाद अगले 3 दिन के दौरान तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की और वृद्धि हो सकती है।
आज के प्राप्त आंकड़ों के अनुसार उत्तर पश्चिमी हवा प्रदेश पर चल रही है, जिसकी रफ्तार 20 से 22 किलोमीटर प्रति घंटा है, जिस कारणवश अगले 2 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में उल्लेखनीय बदलाव का पूर्वानुमान नहीं है। उसके बाद अधिकतम तापमान में वृद्धि का अनुमान है। उत्तर पश्चिम दिशा से प्रदेश पर आने वाली हवा के कारण रात और सुबह में मौसम काफी खुशनुमा रहेगा।
देश में आगामी 2-2.5 महीने में अत्यधिक गर्मी पड़ने की संभावना को देखते हुए केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री किरेन रिजिजू ने विभिन्न हितधारकों के साथ नई दिल्ली में बैठक की। उन्होंने कहा कि अत्यधिक गर्मी के बीच आम चुनावों को देखते हुए राज्य सरकारों सहित सभी हितधारकों ने इस संबंध में व्यापक तैयारी की है।
हीट वेव के समय में कम से कम लोगों को नुकसान हो, इसके व्यवस्था के लिए तैयारी की हुए हैं। हीट वेव को रोकने के लिए स्टेक होल्डर से राज्य सरकारों के साथ मिलकर के मेरे अध्यक्षता में 2 दिनों का बैठक हुई, उसमें पूरा तैयारी कैसे कैसे किया है उसका एक पेशकश की गई है और आगे और क्या करना चाहिए इसका भी एडवाइजरी जारी किया गया है।
रेलवे ने होली के बाद काम पर लौटने वाले प्रवासियों की सुविधा को देखते हुए राज्य के विभिन्न भागों से नई दिल्ली जाने वाली होली स्पेशल रेलगाड़ियों के फेरों में वृद्धि की है। पूर्व मध्य रेल के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी वीरेंद्र कुमार ने बताया कि पटना जंक्शन, गया, राजगीर, सहरसा और समस्तीपुर से 5 अप्रैल तक ये ट्रेनें फेरे लगाएंगी। आज विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस है। दुनिया भर में ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के प्रति लोगों में जागरूकता और ऑटिज्म पीड़ितों के प्रति समाज में स्वीकार्यता पैदा करने के मकसद से प्रतिवर्ष 2 अप्रैल को यह दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष इस दिवस की थीम है ऑटिज्म आवाजों को सशक्त बनाना। इस अवसर पर देश और प्रदेश के कई अस्पतालों में जागरूकता शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। शिक्षा विभाग ने समग्र शिक्षा अभियान के तहत कार्यरत नियोजित शिक्षकों के वेतन के लिए 658 करोड़ रुपए जारी किए हैं। इस राशि से मार्च महीने के वेतन का भुगतान किया जाएगा। इस अभियान के तहत प्रदेश में 2,75,000 से अधिक शिक्षकों को वेतन का भुगतान किया जाएगा। मीराबाई चानू ने थाईलैंड में आयोजित IWF भारोत्तोलन विश्व कप के महिलाओं के ग्रुप बी में 49 किलोग्राम भार वर्ग में तीसरा स्थान हासिल किया है। इस जीत के साथ ही वे पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली देश की एकमात्र भारोत्तोलक बन गई हैं। मीराबाई ने कुल 184 किलो भार उठाया। ग्वालियर में संपन्न 23वीं सीनियर पारा स्विमिंग चैंपियनशिप में मधुबनी जिले के मोहम्मद शम्स आलम शेख ने 200 मीटर एकल स्पर्धा में नेशनल रिकॉर्ड के साथ गोल्ड मेडल जीता है। शम्स ने अन्य स्पर्धा में रजत और कांस्य पदक भी प्राप्त किया। पटना में खेली जा रही 33वीं राष्ट्रीय सब जूनियर बालिका कबड्डी प्रतियोगिता में मेजबान बिहार ने बंगाल को 48-20 से पराजित कर दिया। अन्य मुकाबलों में उत्तर प्रदेश ने आंध्र प्रदेश को, चंडीगढ़ ने त्रिपुरा को और कर्नाटक ने ओडिशा को पराजित किया। पटना में आयोजित रणधीर वर्मा अंडर 19 क्रिकेट टूर्नामेंट में वैशाली ने अरवल को 172 रनों के अंतर से पराजित कर दिया। वैशाली ने निर्धारित 50 ओवर में 8 विकेट पर 335 रन बनाए। इसके जवाब में अरवल की टीम 42 ओवर में 163 रन पर ही सिमट गई। प्रतियोगिता के तहत पूर्णिया में खेले गए अन्य मुकाबले में कटिहार की टीम ने किशनगंज को पराजित किया। जमुई के झाझा में आयोजित एक अन्य मैच में भागलपुर ने बांका को 45 रनों से पराजित कर दिया। खगड़िया जिले के सदर प्रखंड अंतर्गत रहीमपुर दक्षिणी पंचायत के सोसाइटी टोला में आगलगी की घटना में 6 दर्जन से अधिक घर जलकर नष्ट हो गए। अररिया जिले के फुलकाहा में SSB और स्थानीय पुलिस की संयुक्त छापेमारी में 10 किलो गांजा बरामद किया गया। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। लोकसभा चुनाव की खबर को प्रभात खबर अपनी लीड बनाते हुए लिखता है, राजद कांग्रेस में अब भी फंसा है पेंच, पूर्णिया से चुनाव लड़ने पर पप्पू अडिग। दैनिक जागरण का शीर्षक है, कटिहार संसदीय क्षेत्र से तारिक अनवर के विरूद्ध निर्दलीय लड़ेंगे राजद के राज्यसभा सदस्य अशफाक। दैनिक भास्कर ने मौसम से जुड़ी खबर को प्रमुखता से प्रकाशित करते हुए लिखा है, इस बार 85% देश तपेगा, 90 दिन का हीट जोन। हिन्दुस्तान की सुर्खी है, राज्य के आईएएस आईपीएस अधिकारियों की संपत्ति की घोषणा। राष्ट्रीय सहारा की सुर्खी है, एक वाहन एक फास्टैग नियम देश भर में लागू। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर आज राज्य के सभी बूथ कमेटी अध्यक्षों से सीधा संवाद करेंगे। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नाम वापसी का आज अंतिम दिन। 19 अप्रैल को होने वाले मतदान के लिए अब तक 39 उम्मीदवार चुनाव मैदान में। स्वास्थ्य विभाग ने मुजफ्फरपुर सहित 12 AES प्रभावित जिलों के अस्पतालों को अलर्ट किया। प्रोटोकॉल तैयार करने के लिए विशेष कमेटी होगी गठित। और मौसम विभाग ने कहा, इस महीने राज्य में तापमान सामान्य से अधिक रहने की संभावना, बारिश सामान्य से कम होगी। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।